तृतीय अध्याय पृष्ठ संख्या 122। नगरीय परिवेश के उपन्यासों में नारी के विविध रूप। प्रास्ताविक। उपन्यास के केंद्र में है मानव। हमारे प्राचीन साहित्य प्रकारों में नायक या नायिकाओं के रूप में धीरोदात्त गुण समन्वित पात्रों का वर्णन होता था, अतः उसमें जहाँ तक मानवीय गुणों का प्रश्न है पर्याप्त समार्जन एवं संवर्धन की गुंजाइश रहती थी। परंतु उपन्यास ने तो इन सभी अवधारणाओं को ही उलट दिया। उपन्यास मध्य वर्ग, निम्न वर्ग और सर्वहारा वर्ग की भी वस्तु हो गया। अब कोई विशु या चनूली भी उसकी नायिका हो सकती है। हमारे प्रबंध का सरोकार समग्र मानव जीवन के गलीबन एक दिव्यांश 1/2 से है। द्वितीय अध्याय में नगरीयकरण की प्रक्रिया के संदर्भ में कतिपय आयामों को निर्दिष्ट किया गया है। पिछले कुछ दशकों में नगरीयकरण की प्रक्रिया तीव्रतर हो चली है। नगरों और महानगरों की संख्या में निरंतर अभिवृद्धि हो रही है, जिसका प्रभाव नगरीय जीवन पर भी परिलक्षित हो रहा है। और इन अर्थों में नगरवासिनी नारी भी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से प्रभावित हो रही हैं। पैराग्राफ चेंज। यह प्राय देखा गया है कि मानव जीवन के बुनियादी प्रश्न समान रहते हुए भी अनुसंगिक परिस्थितियों के कारण ग्रामीण एवं नगरीय जीवन में नर नारी के जीवन में विभिन्न समस्याओं का समावेश हो जाता है। कई बार ग्रामीण जीवन की जो समस्याएं होती हैं, नगरीय जीवन में वे महत्वहीन हो जाती हैं। ठीक उसी प्रकार नगरीय जीवन की कुछ समस्याएं विशेषतः नगरों में ही पाई जाती हैं और ग्रामीण जीवन को भी उतना प्रभावित नहीं कर सकती। इस प्रकार कुछ समस्याएं विशेष रूप से नगरीय ही होती हैं। उदाहरण के तौर पर मन्नो भंडारीकृत आपका बंटी की जो समस्या है वह विशुद्ध रूप से नगरीय परिवेश की पैदाइश है। ग्रामीण परिवेश में उच्च वर्गीय समाज में अभी वे जीवन मूल्य नहीं आ पाए हैं, जिनके कारण नारी स्वयं को जीवन वर्तुल में केंद्र या उसके आसपास पाए। वहां स्त्री पूर्ण रूपेण परिधि पर चली गई है, अतः नारी की स्वायत्तता या उसके अहम का कोई प्रश्न ही खड़ा नहीं हो सकता। वहां नारी पूर्णतया पुरुष परंपराओं पर निर्भर है। आपका बंटी में जो समस्या उपस्थित हुई है वह अजय और शकुन के अहम के टकराहट के कारण है। शकुन शिक्षित है, नौकरी शुदा है, अतः आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर है, फलतः वह पुरुष की बराबरी करने की क्षमता रखती है। ग्रामीण जीवन में उच्च वर्गीय स्त्रियों में अभी इस आयाम का समावेश नहीं हुआ है। निम्न वर्ग में नारी को अपने घर परिवार के पुरुष की तरह ही खटना पड़ता है। पृष्ठ संख्या 123। बल्कि कहीं कहीं तो पुरुष वर्ग इन नारियों की मेहनत मजदूरी पर पलता है, अतः वहां भी अजय शकुन वाली स्थिति निर्मित नहीं हो सकती। ठीक उसी प्रकार 55 खंबे लाल दीवारे उपन्यास में सुषमा की जो स्थिति है वह भी नगरीय जीवन के कारण ही है। सुषमा का परिवार यदि ग्रामीण परिवेश से संबद्ध होता है तो जो समस्याएं उसके सम्मुख आई हैं वे न आती। सुषमा का विवाह छोटी उम्र में ही कर दिया जाता है और बाकी लोग मेहनत मजदूरी करके कैसे भी अपना निर्वाह कर लेते हैं। वस्तुतः नगरीय जीवन में जो मध्य वर्ग है वह लगभग नौकरियों पर निर्भर हो गया है। एक व्यक्ति कमाता है और शेष लोगों का निर्वाह उसी पर चलता है। दूसरी कोई स्थावर संपत्ति होती ही नहीं, अतः नौकरीशुदा व्यक्ति के असमय कालकल्पित हो जाने पर या किसी असाध्य बीमारी के शिकार हो जाने पर कमोवेश रूप में ऐसी स्थितियों का निर्माण होता है जो 55 खंभे लाल दीवारे जैसे उपन्यास में दृष्टिगत होता है। इस संदर्भ में डॉक्टर पारुकांत देसाई के इन शब्दों को रेखांकित किया जा सकता है। इन्वर्टेड कॉमा ओपन। प्रस्तुत उपन्यास में ब्रैकेट में 55 खंभे लाल दीवारें सुषमा के जीवन की जो त्रासदी है उसके जीवन में जो संतरास घुटन और पीड़ा अकेलेपन की यातना है समाज जीवन मूल्यों का जो बदलाव है भौतिकता का जो आग्रह है इन सब के पीछे नगरीय परिवेश ही मूलतः कारणभूत है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज संदर्भ ग्रंथ आधुनिक लेखिकाओं के नगरीय परिवेश के उपन्यास डॉक्टर पारुकांत देसाई पृष्ठ संख्या 112। पैराग्राफ चेंज। अभिप्राय यह है कि नगरीय जीवन की अपनी कुछ विशेषताएं हैं और उसके कारण नगरीय जीवन की नारियों में कुछ विशेष प्रकार की समस्याओं को विश्लेषित किया जा सकता है। नगरीय जीवन में भी उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग और निम्नतम वर्ग की नारी समस्याओं में अंतर को परिलक्षित किया जा सकता है। नगरीय जीवन में सुसंस्कृत, संभ्रांत तथा तथाकथित कुलीन नगरीय जीवन भी है, तो दूसरी तरफ झोपड़पट्टियों और कच्ची बस्तियों का जीवन भी, जो किसी नरक से कम नहीं होता। बंबई की माहिम तथा धारावी की झोपड़पट्टियों में नारी का जो जीवन है वह कहीं कहीं तो ग्रामीण परिवेश की निम्न स्तरीय नारियों से भी बदतर होता है। निम्न वर्गीय नगरीय लोगों का जीवन जीने की अपनी जद्दोजहद और अपनी अस्तित्व रक्षा से संपृक्त है, तो उच्च वर्ग और मध्य वर्ग की नारियां कुछ मनोवैज्ञानिक ग्रंथियों और मनोवैज्ञानिक समस्याओं की शिकार होती हैं, जिनका ग्रामीण नारियों में सर्वथा अभाव पाया जाता है। रुकोगी नहीं राधिका उपन्यास में राधिका की जो मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं, उसकी जो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है, वह विशुद्ध रूप से नगरीय जीवन की देन है। अभिप्राय यह है कि नगरीय परिवेश में नारी के विविध रूपों का अध्ययन करते समय हमें उनकी परिवेशगत समस्याओं से भी गुजरना पड़ता है, जो असंदिग्ध ग्रामीण परिवेश की नारी समस्याओं से कुछ अलग प्रकार की हैं। नगरीय जीवन की समस्याएं और नारी जीवन पर उसका प्रभाव। पृष्ठ संख्या 123। बढ़ते हुए नगरीयकरण ने अनेक सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक समस्याओं को जन्म दिया है। शहरों में जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है। इस बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण नगरीय जीवन में कई समस्याएं पैदा हो रही हैं, जिनका प्रभाव शहरों में रहने वाली स्त्रियों पर भी पड़ रहा है। यहाँ ऐसी कुछ समस्याओं पर विचार करने का उपक्रम है। पृष्ठ संख्या 124। पहला, अपराध वृत्ति में बढ़ोतरी। यह प्रायः देखा गया है कि गांवों की तुलना में नगरों में हिंसा और अपराध की प्रवृत्तियां बहुतायत से प्राप्त हो रही हैं। नगरों में परिवार, धर्म, पड़ोस, रक्त संबंध एवं जाति के नियंत्रणों में शिथिलता आई है, जिनके कारण अपराधों की संख्या बढ़ रही है। शहर में अपरिचितता तथा आपाधापी के कारण भी अपराध वृत्ति बढ़ रही है। चोरी, डकैती, जेबकतरी, हत्याएं, लड़कियों को भगा ले जाना, बच्चियों को उठा ले जाना, ठगी, स्त्रियों का रक्त व्यापार, शराब के अड्डे चलाना, जुए के अड्डे चलाना, वैश्यालयों को चलाना, मादक द्रव्यों का हेर फेर करना, हिंसक हथियारों से सौदे करना, जैसे अनेक अपराधों का आधिक्य शहरों में पाया जाता है। इनमें से कई अपराध सीधे स्त्रियों से जुड़े हैं, और जो अपराध स्त्रियों से जुड़े हुए नहीं हैं, वहाँ भी परोक्ष रूप से स्त्रियों को ही भुक्तभोगी होना पड़ता है। नदी फिर बहचली की पर्वतिया का विवाह उसकी ही जाति के एक युवक से होता है, जो पटना में ड्राइवर का कार्य करता है। ड्राइवर होने के कारण वह शराब, सिगरेट, जुए के चक्कर में पड़ जाता है, और इन्हीं कारणों से वह एक बार हत्या के आरोप में पकड़ा जाता है। फलतः पर्वतिया के सामने अपना तथा अपने बच्चों के पालन पोषण का प्रश्न उपस्थित होता है। मुर्दा घर की मैना तथा चौथी मुट्ठी की मोतीमा मस्तानी को शहरी बाबू फंसाकर गांव ले जाते हैं, जहां उन्हें वैश्या जीवन गुजारने पर मजबूर होना पड़ता है। दूसरा, स्वास्थ्य की समस्या। गांवों की तुलना में शहरों में गंदगी और प्रदूषण अधिक मात्रा में मिलते हैं। कहा भी गया है, शहर की दवा और गांव की हवा बराबर होती है। शहरों में मकानों की भीड़भाड़, तंग दस्ती मीलों, फैक्ट्रियों और यातायात के साधनों का धुआं, हवादार मकानों की कमी, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, बदबूदार एवं सिलन भरे कमरे, मच्छरों का उपद्रव आदि के कारण लोगों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह पाता। डॉक्टर प्रभु के एक सर्वेक्षण के अनुसार 61% लोगों ने बम्बई में आने के बाद बीमार रहने की शिकायतें की थी। 3% लोगों ने अपने परिवारजनों की मृत्यु के लिए शहरी जनों को उत्तरदायी बताया था। संदर्भ ग्रंथ भारतीय सामाजिक समस्याएं, डॉक्टर एम.एल. गुप्ता तथा डी.डी. शर्मा, पृष्ठ संख्या 115। नगरीय जीवन का प्रभाव मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है और लोग अनिद्रा एवं चिंता से परेशान रहते हैं। नगरीय जीवन में गंदी बस्तियों में रहने वाले लोग इसके अधिक शिकार हैं। जगदम्बा प्रसाद दीक्षित कृत मुर्दा घर, मंजुल भगत कृत अनारो, भीष्म साहनी कृत बसंती, हिमांशु श्रीवास्तव कृत नदी फिर बह चली जैसे उपन्यासों में हमें नगरीय परिवेश की इन गंदी सड़ी गली बस्तियों का परिचय मिलता है। यहाँ भी उक्त स्वास्थ्य विषयक बीमारियों का भोगी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्त्रियों को ही होना पड़ता है। तीसरा, व्यक्तिवाद की समस्या, पृष्ठ संख्या 124। नगरों में बसे लोगों में व्यक्तिवाद की भावना का प्राबल्य पाया जाता है। गांव में खेतीबाड़ी के कामों में अनेक लोगों की आवश्यकता रहती है, अतः वहां संयुक्त परिवार की भावना आज भी अधिकांशतः मिलती है। दूसरी तरफ शहरों में श्रम विभाजन एवं निवेशीकरण की प्रवृत्ति के कारण व्यक्तियों का जीवन नौकरियों पर अधिक निर्भर रहने लगा है। फलतः व्यक्ति आत्म केंद्रित, अंतर्मुखी एवं स्वतंत्र हो जाता है। शहरी लोगों के संबंधों में एक विशिष्ट प्रकार का ठंडापन पाया जाता है। प्रेम के सौहार्द एवं उष्मा का वहां अभाव होता है। पारिवारिक रक्त संबंधों की अपेक्षा व्यवसाय मूलक द्वितीय संबंधों का आधिक्य यहाँ पाया जाता है। व्यक्ति का मूल्यांकन धन एवं गुणों से होता है, न कि परिवार एवं जाति से। नदी फिर बह चली की पर्वतिया का पति जगधर पटना जाने के पश्चात आत्म केंद्रित हो जाता है और अपने सगे भाई को जो रुपए भेजता है उसका भी हिसाब किताब रखता है। उषा प्रेमदा की वापसी कहानी इन टूटते बिखरते मानवीय संबंधों को भली भांति रेखांकित करती है। परंतु जहाँ पारिवारिक रिश्ते टूट रहे हैं, वहाँ कहीं कहीं द्वितीय संबंध अधिक प्रगाढ़ हो रहे हैं। यह भी शैलेश मटियानी कृत छोटे छोटे पक्षी जैसे उपन्यासों में परिलक्षित किया जा सकता है। चौथा, मकानों की समस्या, पृष्ठ संख्या 125। शहरों में मकानों की समस्या ने एक भयंकर रूप धारण किया है। गुजराती में तो इस पर एक कहावत ही बन गई है, शहर माँ रोटलो मणे पर ओटलो ना मणे। अर्थात शहर में एक बार खाने को मिल सकता है, परंतु रहने के लिए स्थान नहीं मिलता। बम्बई जैसे शहर में तो छोटे छोटे दरबेनुमा मकानों में कई कई लोग रहते पाए जाते हैं। बम्बई जैसे महानगरों में अकेले नौकरी करने वाले लोग कई बार पलंग या खाट किराए पर लेते हैं। रमेश पक्षीकृत 18 सूरज के पौधे का नायक रेलवे में नौकरी करता है, अतः उसका खाना पीना सोना सब ट्रेनों में ही होता है। अपनी पोस्ट रेगुलर मिलती रहे इसलिए पोस्टल एड्रेस की खातिर एक बोर्डिंग हाउस में एक खाट उसने किराए पर ले ली है। बम्बई, कलकत्ता, कानपुर और चेन्नई जैसे औद्योगिक शहरों में तो सोने के पलंग भी मंजिल नुमा होते हैं और एक एक कमरे में कई बार 15-15, 20-20 लोग रहते हैं। कमलेश्वर कृत तीसरा आदमी के नायक की समस्या आवास की तंग दस्ती के कारण ही है, परंतु उसका भोगी उसकी पत्नी को होना पड़ता है। मकान की तंगी के कारण वह दिल्ली में अपने एक मित्र के साथ रहता है और उसकी नौकरी दौरे की है, अतः कई बार उसे कई कई रातों के लिए बाहर रहना पड़ता है। फलतः वह अपनी पत्नी के चरित्र को संदिग्ध दृष्टि से देखता है, जिसके कारण उसके दाम्पत्य जीवन में भी दरारें पड़ने लगती हैं। निरुपमा सेवती कृत पतझड़ की आवाजें नामक उपन्यास में उसकी नायिका अनुभा की सगाई इसीलिए टूट जाती है कि आर्थिक अभावों के कारण उसके परिवार को ऐसे स्थानों पर रहना पड़ता है जिसके ऊपर के तल्ले पर वेश्याओं का कोठा था। शहरों के किनारे बसी झोपड़ियों का तो और भी बुरा हाल है। मराठी के लेखक जयंत दड़वी के चक्रधर उपन्यास में इस समस्या को भलीभांति उकेरा गया है। पांचवा, जाति प्रथा में स्थिरता, पृष्ठ संख्या 126। गांव की अपेक्षा शहरों में जातिगत स्थिरता दृष्टिगोचर होती है। जाति की कई विशेषताएं हैं जो खान पान, ऊंच नीच, परंपरागत व्यवसाय एवं विवाह के नियम परिचालित होते हैं। होटलों एवं रेस्टोरेंटों तथा जनसंख्या की अधिकता के कारण शहर में खान पान संबंधी तथा छुआछूत संबंधी नियमों का पालन नहीं हो सकता। इसके कारण शहरों में विवाहों के नियमों में भी तब्दीली आई है। अंतरजातीय विवाहों के संघर्ष तथा उसके परिणामों को व्यंजित करने वाले उपन्यास अभी पाए नहीं जाते। हमारे उपन्यासकारों के लिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र अभी प्रतीक्षा कर रहा है। छठवां, कौमी दंगों की समस्या। अंग्रेजों ने इस देश में अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए और बाद में उसको टिकाए रखने के लिए डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया था, जिसके कारण हिंदुओं तथा मुसलमानों में कौमी वैमनस्य बढ़ता ही गया। आज़ादी के बाद भी इनके बीच की दरार पट नहीं पाई है, बल्कि कुछ राजनीतिक पार्टियों ने अपने निजी हितों के लिए उसे बढ़ावा दिया है। फलतः बड़े नगरों में कौमी आग दावा नल की तरह फैल जाती है। कौमी दंगों में स्त्रियों पर ही अधिक अत्याचार होते हैं तथा कौमी दंगों का परिणाम भी स्त्रियों को ही भुगतना पड़ता है। तमस, प्रश्न और मरीचिका, एक पंखुड़ी की तेज धार जैसे उपन्यासों में इसे परिलक्षित किया जा सकता है। सातवां, अजनबीपन की समस्या। व्यक्ति केंद्रीय भौतिकवादी चिंतन के कारण शहर का मनुष्य अंतर्मुखी और स्वतंत्र होता गया है। आर्थिक संबंधों की वरीयता के कारण दूसरे जीवन मूल्य धराशायी हो गए हैं, अतः व्यक्ति भीड़ में भी अकेला हो गया है। इस अकेलेपन के कारण संतरास, घुटन, पीड़ा, ऊब, रीतापन जैसे भाव व्यक्ति को पीड़ित कर रहे हैं। वे दिन डाक बंगला, 55 खंभे, लाल दीवारें, 18 सूरज के पौधे, अंधेरे बंद कमरे, अंतराल जैसे उपन्यासों में यह अजनबीपन का भाव दृष्टिगत होता है। आठवां, वैश्यवृत्ति की समस्या। गांव में भी वैश्यवृत्ति चलती है, परंतु पारस्परिक अति परिचयता के कारण उसे गोपनीय रखा जाता है, जबकि शहरों में जनसंख्या की बहुलता के कारण अपरिचय का वातावरण बनता है, जिसमें वैश्यवृत्ति कई बार खुलेआम पनपती है। शहरों में इस वैश्यवृत्ति के दो धरातल मिलते हैं। उच्च वर्गीय समाज में वैश्यवृत्ति कॉल गर्ल के रूप में विकसित हो रही है, जिसमें पढ़ी लिखी सुशिक्षित अभिजात वर्ग की महिलाएं भी भौतिकता की चकाचौंध से आकर्षित होकर समाविष्ट होती रही हैं। दूसरी तरफ भयंकर गरीबी के कारण सस्ती वैश्याओं की बस्तियां फल फूल रही हैं। अभी हाल में गुजरात के राजकोट नगर के संबंध में एक सर्वेक्षण में बताया गया कि राजकोट के भावनगर रोड पर एक बस्ती है जहाँ सैकड़ों वैश्याएं रहती हैं, और कुछ महीने पूर्व जिला कलेक्टर ने ही वहां एड्स जैसे महाविनाशक रोग के खतरे से बचने के लिए पंची निरोध मशीन का उद्घाटन किया था। गुजरात के सूरत, अहमदाबाद, बड़ौदा जैसे नगरों में भी इसे देखा जा सकता है। बम्बई जैसे महानगरों में तो ऐसे विस्तारों को रेड लाइट एरिया कहा जाता है। मुर्दा घर, अनारो, नदी फिर बह चली, पतझड़ की आवाजें जैसे उपन्यासों में इस प्रवृत्ति को लक्षित किया जा सकता है। नौकरीशुदा स्त्रियों का जातीय शोषण, पृष्ठ संख्या 127। लाख स्त्री समानता तथा नारीवाद की बात करें, परंतु स्त्रियों का दैहिक या जातीय शोषण एक विश्वजनीन घटना है। पश्चिमी देशों में जहां नारी स्वातंत्र्य और नारी मुक्ति की उद्घोषणा सर्वाधिक रूप में सुनाई पड़ती है। वहां भी नौकरी करने वाली स्त्रियों को अपने बॉस की विलासी वृत्तियों को पोसना पड़ता है। प्रश्न और मरीचिका की रोजी, जो एक अमेरिकन युवती है, अपने एक भारतीय मित्र को बताती है कि लोग हमारे जीवन स्तर को देखकर चौंकते हैं, परंतु हमें इस जीवन स्तर की प्राप्ति हेतु कई बार अपने उच्च अधिकारियों के साथ सोना भी पड़ता है। हमारे देश में सामंतकालीन मूल्यों और पूंजीवादी लोगों की पकड़ अधिक चुस्त होने के कारण इस प्रकार के शोषण का परिणाम और भी बढ़ जाता है। सरकारी क्षेत्रों की तुलना में खानगी और निजी क्षेत्रों में नारी की जातीय शोषण का परिणाम अधिक पाया जाता है। डाक बंगला, छाया मत छूना मन, पतझड़ की आवाजें, नावे, देहाती दीवारें जैसे उपन्यासों में इसे रेखांकित किया जा सकता है। 10वां, नारी के आर्थिक शोषण की समस्या। इधर परिवर्तित स्थितियों में नारी शिक्षा का प्रमाण बढ़ा है, परंतु इसके कारण नारी के आर्थिक शोषण का एक नया कोण भी उद्भूत हुआ है। शहरों में संयुक्त परिवार टूट गया है। नौकरी वाले मध्यम वर्ग के पास नौकरी के अतिरिक्त आमदनी का कोई दूसरा क्षेत्र नहीं होता। ऐसी स्थितियों में परिवार के मुख्य व्यक्ति के निवृत्त हो जाने पर अथवा उसके किसी असाध्य बीमारी में फंस जाने पर परिवार को चलाने का उत्तरदायित्व बड़ी लड़की पर आ जाता है, जिसके कारण उसे अपने व्यक्तिक सपनों का बलिदान देना पड़ता है। कई बार माँ बाप की लोभ वृत्ति भी उसे कारणभूत होती है। उषा प्रियंवदा कृत 55 खंभे लाल दीवारें, लक्ष्मीकांत वर्मा कृत टेरा कोटा, ममता कालिया कृत बेघर, हिमांशु जोशी कृत छाया मत छूना मन जैसे उपन्यासों में नारी के इस आर्थिक शोषण के आयाम को उकेरा गया है। रहवा, नारीवादी चिंतन से उत्पन्न समस्याएं। स्त्री शिक्षा और जागृति के कारण सुशिक्षित उच्च वर्गीय संपन्न महिलाओं में अपने अधिकारों को लेकर जागरूकता देखी जा सकती है। इस नारीवादी चिंतन से जहां लाभ हुए हैं, वहां उसके कारण परिवार में विघटन की प्रक्रिया भी कहीं कहीं तीव्रतर हुई है। पुरुष आधुनिकता का दंभ तो भरता है, परंतु अभी पूर्ण रूपेण अपने मध्ययुगीन संस्कारों से मुक्त नहीं हुआ है। फलतः स्त्री पुरुष के अहम टकरा रहे हैं और इस टकराहट के कारण अनेक परिवार भी टूट रहे हैं। मन्नू भंडारी कृत आपका बंटी, निर्मल वर्मा कृत वे दिन, मोहन राकेश कृत अंधेरे बंद कमरे, ओसा प्रियंवदा कृत रुकोगी नहीं राधिका जैसे उपन्यासों में हम दाम्पत्य जीवन की इन दरारों को देख सकते हैं। स्त्री पुरुष के इस संघर्ष में पृष्ठ संख्या 128, कई बार छोटे बच्चों का जीवन भस्मीभूत हो जाता है। आपका बंटी, मन्नू भंडारी तथा कड़ियां भीष्म साहनी में शिशु जीवन की इस यातना को देखा जा सकता है। पैराग्राफ चेंज, अभिप्राय यह है कि नगरीय जीवन की कई अपनी समस्याएं हैं। प्रस्तुत अध्याय में नारी जीवन के परिप्रेक्ष्य में उसके विभिन्न रूपों को लक्षित करने का उपक्रम है, अतः यहाँ ऐसे कुछ एक उपन्यासों पर विचार करना आवश्यक प्रतीत हो गया है, जिसमें नारी जीवन के विभिन्न आयामों को किसी न किसी तरह चिन्हित करने का यत्न हुआ है।